Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब जो है उन्हीं से जब वो बने हैं तो इसलिए गीता में क्या कहा, गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति। अब जिसे ये विवेक है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे, भाई कहीं सात्विक अंश से इंद्रियां बनी, कहीं राजस अंश से बनी, और इसी प्रकार से उनके विषय उन पंचभूतों को एक एक की प्रधानता को लेकर के बने। तो अब यहां पर जो है विचार किया जाए कि उन्हीं से जब वो निर्मित हुए हैं तो क्या है, वो ही उसमें स्वयं ही वर्त रहे हैं। तो कौन वर्त रहे हैं? गुण ही गुणों में वर्त रहे। अब यहां पर फिर प्रवृत्ति का हेतु कौन, प्रवृत्ति कब होती और उस प्रवृत्ति में बंधन का कारण कौन, प्रवृत्ति का हेतु कौन और उस प्रवृत्ति में बंधन का कारण, कारण कहो हेतु कहो एक ही बात। अब जो है विचार जब ये करोगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि जिन पंच महाभूतों से इंद्रियां बनी हैं, जिन पंच महाभूतों से विषय बने हैं, और वो कैसे हैं, तो पंच महाभूत ही कैसे, चेतन है कि जड़, जड़ है। तो जड़ स्वतः प्रवृत्त कहीं होता, जड़ को प्रवृत्त करने के लिए किसी चेतन की आवश्यकता होती। तो फिर विचार ये करना होगा कि इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति का फिर हेतु कौन है, तो कहने लगे कोई चेतन होगा, लेकिन वो भी चेतन कैसा, तो अचेतन तो केवल एक आत्मा है, सुनते रहते हो, तो क्या वही प्रवृत्त होता, तो कहने लगे वो भी प्रवृत्त नहीं होता। जब वह चेतन भी प्रवृत्ति का हेतु नहीं है और वह जो है जड़ पदार्थ भी स्वयं प्रवृत्त हो नहीं सकता है, तो इसमें प्रवृत्ति का फिर हेतु कौन है, प्रवृत्त कराने वाला कौन है, तब क्या कहोगे। तो आप सामान्य रूप से कह दोगे हम हैं, और यहीं पर कहो कि मैं हूं, अहम है, तो ये अहम भी क्या है, अध्यास वास से तो पढ़ते हो, पढ़ा होगा कभी सुना तो होगा ही, सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहमेदम इति नैसर्गिको अयम लौकिक व्यवहारा। एक सत्य पदार्थ है और एक असत्य पदार्थ, एक चेतन पदार्थ है और एक जड़, चेतन में भी क्रिया नहीं और जड़ में भी क्रिया नहीं, तब क्रिया किसमें है, तब ये समझना होगा कि क्रिया किसमें, तब क्या कहा जाए, कहने लगे जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, सत्य और झूठ का क्या हो गया, कहा मिथुन हो गया है, उनका योग हो गया। अब बड़ी समस्या तो ये है कि जो झूठ है वो तो झूठ ही रहेगा, असत्य है वो असत्य रहेगा, और आप गीता में सुनते रहते हो कि जो है असत्य का कभी भाव नहीं होता, विद्यमानता नहीं, और सत्य की कभी अविद्यमानता, न भावो विद्यते सता है, सत्य का कभी अभाव नहीं और असत्य का कभी भाव नहीं होता। तो कहने लगे जब भाव एक भाव रूप है एक अभाव रूप है, तो मिलना भी कैसे होगा, ये मिलेंगे भी, भाई दो पदार्थ हो और दोनों की सत्ता हो तो उनकी एकता करना, उनका मिलना तो कहा जा सकता है, लेकिन जब दोनों पदार्थों में एक पदार्थ की विद्यमानता, एक पदार्थ विद्यमान है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। इसलिए वेदांत पर वेदांत शास्त्र के अंतर्गत इस मेल को क्या कहा, तादात्म्य, इसी का नाम क्या कहा, तादात्म्य का मतलब ही है कि जो वास्तव में मिले हुए नहीं है लेकिन फिर भी मिले हुए की प्रतीति हो रही है। किसी का नाम है तादाद, माने जिनका अवेद नहीं लेकिन फिर भी अवेद की प्रतीति हो रही। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, लोहा जो होता है वो किसी को जलाता नहीं, उसमें जलाने का धर्म नहीं, जलाने का धर्म किसमें है? कहा अग्नि में। अग्नि में जलाने का धर्म है, लोहे में जलाने का धर्म है नहीं। लेकिन जब अग्नि और लोहे का योग हो जाता है, वहां तो दोनों पदार्थों की सत्ता है, तो इसलिए वहां योग कहेंगे, संयोग कहेंगे। तादात में तो असत और सत पदार्थ का होता है, यह भी ध्यान रखना। तादात में शब्द वही प्रयोग होता है जहां एक पदार्थ की विद्यमानता हो और एक पदार्थ की विद्यमानता न हो, और वहां पर भी जो है अभेद की प्रतीति हो, तो उसी को तादात में अभेद कहते या तादात में संबंध कहते। और संयोग संबंध जहां दो पदार्थ होते हैं तो उनको संयोग संबंध कहते। तो अग्नि की भी व्यवहार में जो है व्यवहार रूप से जो है सत्ता है, लोहे की भी सत्ता है, और लोहे में जो है जलाने का धर्म नहीं है, अग्नि में जो है जलाने का धर्म। लेकिन दोनों के योग हो जाने पर क्या होता है? कहने लगे अग्नि का जो धर्म है उस अग्नि के धर्म का तादात्म्य हो जाता। अब थोड़ा कह सकते हैं धर्म का तादात्म्य होता है, लोहे का अग्नि का तादात्म्य नहीं कहा जाएगा, लोहे के अग्नि को संयोग संबंध कहा जाएगा और उसके धर्म का तादात्म्य होता, क्योंकि वो उसमें रहने वाला नहीं। लेकिन संयोग संबंध को लेकर के क्या होता है कि उसके धर्म की उसमें भी प्रतीति, और फिर हो जाता है कि लोहा जलाता है, लेकिन लोहे में जलाने का धर्म तो है नहीं, लेकिन कैसे जला रहा है का तादात्म्य को लेकर। ठीक इसी प्रकार से जड़ और चेतन, चेतन में क्रिया है नहीं, जड़ में क्रिया है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है दोनों के तादात्म्य संबंध को लेकर के, दोनों के अभेद संबंध को लेकर के, और वहां पर जो है क्या हो जाता का क्रिया का आरोप हो जाता, दोनों के तादात्म्य में क्रिया का आरोप हो जाता। अब जो जैसे लोहे में वह धर्म है नहीं जलाने का, लेकिन उस संयोग संबंध से उसमें वो तादात्म्यता आ गई और जलाने का आरोप हो गया, वैसे ही सत और जो है असत, जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा है या अनात्मा और आत्मा, इन दोनों के तादात्म्य होने से, या कहो माया और परमात्मा, इन दोनों का तादात्म्य जैसे हुआ, लेकिन कैसा तादात्म्य, मिथ्या ही है तादात, है ना। अब इनका जब तादात्म्य संबंध हुआ, अवेद संबंध हुआ, तो वहीं पर एक तीसरी चीज पैदा हो गई, वो क्या हुई, अहम, है ना। एक मूड कहावत है, गांव में लोग कहते हैं, जिसे मूड कहावत कह दो तो क्या कहते हैं कि दाल भात में, हाँ। तो अब माने जो है अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है लेकिन उसमें बीच में आ गया, तो ये कौन आया, ये ही आया अहम। तो ये अहम क्या है, तो न तो जो अहम जो है अभी चेतन ही पूर्ण रूप से है और न अचेतन है, लेकिन जो है चेतन वत प्रतीत होते हुए और ये अहम है शुद्ध, और जहां शुद्ध अहम कहोगे वहां अहम नहीं रह जाएगा, वहां केवल अह शब्द बचता। तो अब जो ये अहम है इस अहम से ही क्रिया होती, इस अहम में ही राग और द्वेष रहता, और ये अंतःकरण में ही होता अहम, तो इसमें ही राग द्वेष है, इसमें ही आसक्ति है। अब उसका एक क्रम है, अहम, अहम से मम, इसलिए वहां कहा कि सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लौकिक व्यवहारा। ये जो लोक का संसार का व्यवहार है वो कब है, तो कहने लगे जहां पर सत्य और असत्य का है तादात्म्य संबंध हो गया, और तादात्म्य संबंध होने पर का अहम पैदा हो गया और अहम जैसे ही पैदा हुआ, अहम जैसे ही खड़ा हुआ, वही मम भी खड़ा हो गया। और जैसे मम खड़ा हुआ तो क्या हो गया, तो ताना और बाना बन गया, अहम और मम, एक ताना हो गया एक बाना हो गया। और जहां ताना बाना होगा तो वहां पर क्या होगा, कहने के वस्त्र बन जाएगा। तो ये सारा विस्तार हो गया। जैसे ही अहम मम आया तो अहम मम आने पर फिर कामना शुरू हो गई, इच्छा शुरू हो गई। और कामना शुरू हुई, उस कामना में भी राग और द्वेष बैठा हुआ। और राग द्वेष पूर्वक वह कामना जब कामाय मान होती है तो वहां मल रहता है और वही प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु भी होता है। ये संकेत किया। अब ये संकेत किया तो एक और थोड़ा सा विचार कर लो। वाल्मीकि आदि रामायण के अंतर्गत आप लोगों ने सुना है, हम जो इसमें प्रवृत्त होते हैं तो राग को लेकर के होते हैं। और राग क्या होता है कि अमुक पदार्थ में सुख है, सुख की कामना से प्रवृत्त होते हैं। लेकिन विचार करके देखो सुख कहां है, तो वहां तो साफ शब्द में कहा कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, तो दूसरा से व्यक्ति विशेष भी और पदार्थ विशेष भी ले लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सुख उनमें नहीं है। सुख किसमें है, क्योंकि यदि उसमें सुख होता तो आप विचार करो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय हैं और सारा संसार जितने भी विषयों की कल्पना करके और सुख की कल्पना करके प्रवृत्त होता है तो इन्हीं पांच के अंतर्गत रहता है, इन पांच से भिन्न कहीं जाता, किसी भी विषय को लेकर के वह प्रवृत्त हो, विषय का कोई भी रूप वह समझे, लेकिन पांच से हटकर के वह नहीं। अब यदि इस विषय को ही सुखद माना जाए तो आप विचार करो, और सुख वास्तव में उस विषय में है कि अन्यत्र, सुख की कल्पना कहीं अन्यत्र। वही विषय आज आपको प्रिय लग रहा है, विषय वही है, विषय में परिवर्तन नहीं हुआ। और कल है, आज हमें पुष्प बड़ा सुखद लग रहा, इसकी सुगंधी ग्रहण करते तो बड़ा सुखद लगता, लेकिन यदि एलर्जी हो गई तो जो पुष्प हमें सुखद लग रहा था, सुख देने वाला लग रहा था, और जिसे एलर्जी हो गंध से तो उसे क्या होगा, वो पुष्प ही दुखद। तो जो पदार्थ वही है, लेकिन वही आज हमें प्रिय है और कल हमें अप्रिय हो जाता है। तो आज सुख दे रहा है और कल वही दुख देने वाला, तो क्या पदार्थ दे रहा, पदार्थ तो पहले भी गंध वाला था आज भी गंध वाला, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन जो आया वो कहां से आया, तो कहोगे हमारे से, और उसी को लेके आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती। संसार में भी आप जिस व्यक्ति विशेष को अपना मित्र मानते थे, आज मित्र मान रहे हो, कल वही शत्रु हो जाता। तो व्यक्ति तो वही है, लेकिन मित्रता शत्रुता ये जो कल्पना की गई और मित्रता शत्रुता को लेके सुख दुख की कल्पना की गई, ये कल्पना का उदय कहां से हुआ, तो राग द्वेष पूर्विका वृत्ति से। और वो वृत्ति कहां रहेगी, आपके अंतःकरण में रहेगी, अहम को लेकर के रहेगी। अंतःकरण भी अहम के बगैर ये सब करने, और अंतःकरण में ही अहम होता है, अहम को लेके मम होता है, मम को लेके कामना होती, कामना राग द्वेष पूर्विका होती। और राग द्वेष पूर्विका जब कामना होती है तो वही कामना हमारे लिए बंधन का हेतु होती है, दुख का सुख का हेतु, माने द्वंद का हेतु होती है। और द्वंद कैसे हैं, तो गीता में आप सुनते हो निर्माण मुभादि श्लोक के अंतर्गत है, द्वंदैर विमुक्ता सुख दुख संग। ये द्वंद कैसे हैं, ये द्वंद जितने भी हैं वो सुख और दुख वाले। और संसार क्या है, द्वंदात्मक, क्योंकि संसार जो है वो द्वंद रूप ही है। द्वंद से हटकर के संसार नाम की कोई चीज नहीं। तो अब इससे सिद्ध हो गया कि विषय सुख देने वाले भी नहीं है और विषय दुख देने वाले भी नहीं। सुख और दुख देने वाली कौन है? तो हमारी वृत्ति। अब जो वृत्ति आपकी कैसी है, यदि राग द्वेषात्मक वृत्ति है तो वहां द्वंद रहेंगे और द्वंद्वों को लेकर के सुख भी होगा और दुख भी होगा, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक ये स्थिति है तब तक है संसार, तब तक क्या है? संसार। और रहना भी इसी में, क्योंकि संसार की निवृत्ति होने वाली भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको लेकर के तुम अपने को समझते हो, मैं करके कहते हो, वो भी तुम्हारा पंचभूतों का शरीर है और विषय भी पंचभूतात्मक, और उन्हीं में लेकर के तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही है, इसकी निवृत्ति नहीं होनी है। ये तो इसी में संसार में रहोगे और संसार में ये प्रवृत्ति निवृत्ति बनी रहे। लेकिन फिर भी यहां पर एक विशेष बात जो कही गई कि यह निवृत्ति प्रवृत्ति में हेतु क्या है, तो अज्ञान तो है ही, लेकिन अज्ञान से पहले की क्रिया को समझाते हुए कहा कि राग और द्वेष हमारी आसक्ति, इसलिए लिखा किसी ने, बद्ध कौन कहलाए जो विषयन का अनुरागी, और कौन जानिए मुक्त युक्त विषयन का त्यागी। ये संकेत मां किया, कहा बंधन में कौन है, किसको बंध कहोगे? तब तो मुमुक्षता होगी, जब पहले समझ में आए कि हम बंधन में हैं, हम परतंत्र हैं, तब तो स्वतंत्र होना चाहोगे। तो कहने लगे जो विषयों में राग रख रहा है, जिसका विषयों में अनुराग है, वही बंधन में। और मुक्त कौन है? कहा जिसका विषयों में राग नहीं रह गया वही मुक्त। तो अब मुक्त होने का मतलब ये नहीं वो विषय भी है आप भी हो, लेकिन किस चीज के निवृत्त होने पर आप स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। तो क्या बतलाया? कहने लगे आसक्ति की, विषयों में जो आसक्ति है उसकी निवृत्ति होना, और वो आसक्ति धर्म है अंतःकरण में, और वो अंतःकरण में रहने वाला जो आसक्ति रूप धर्म है वो कैसा है? तो कहा जैसे तेल आदि पदार्थों में क्या होती है? चिकनाई होती है, और चिकनाई का स्वभाव क्या है? तुरंत पकड़ लेती है। चिकनाई का स्वभाव क्या है? तुरंत पकड़ लेना, ठीक है ना। अब जो है इसी को कल संकेत किया, शरीर इंद्री मन प्राण बुद्धि और आत्मा, इन्हीं के संगठन का नाम, इन्हीं के समन्वय का नाम क्या है? मैं। इन्हीं को लेकर के तो तुम मैं कहने में समर्थ हो, लेकिन विचार करो ये मैं कहां है? तो मध्य में है, बीच में है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में तुम्हारा मैं कहां होता? सुसुप्ति अवस्था में मैं नहीं होता है, लेकिन जागृत अवस्था में ही तुम्हारे मैं की स्थिति देखी जाती, तो वहां पर मैं नहीं है, और जहां मैं नहीं है तो वहां कोई राग भी नहीं है और वहां कोई द्वेष भी नहीं, और राग द्वेष नहीं है तो वहां दुख भी नहीं, सुसुप्ति में कोई दुख नहीं होता। तो क्यों नहीं है? तो ये आपको प्रमाण है आपके सामने, रोज का अनुभव है कि वहां राग द्वेष का अभाव है और अहम जो है अहम रूप से स्फुरित नहीं हो रहा, और जब स्फुरित नहीं हो रहा है तो वहां पर जो है कोई भी सुख और दुख नहीं, किंतु परम सुख की स्थिति की अनुभूति होती, लेकिन वो क्षणिक है, वहां भी अज्ञान विद्यमान, अज्ञान की आवर्तता है, इसलिए वो क्षणिक। इसलिए यहां संकेत किया कि वही राग और द्वेष रहते हैं कहां? मध्य में, अंतःकरण में, मन और प्राण की जहां स्थिति है वही राग द्वेष है और वही क्रिया। जहां पर अंतःकरण नहीं होगा, जहां पर मध्य की स्थिति नहीं होगी, वहां पर जो है राग और द्वेष नहीं। तो ये मध्य की जो स्थिति है, मन और प्राण जो कह दिए गए, ये ही क्या है? का क्रिया के हेतु हैं और ये ही प्रवृत्ति के हेतु। मन में राग रहता है और प्राण रूपी क्रिया के द्वारा फिर प्रवृत्ति होती है, वो बल रूप है। तो संकेत किया, अब इस चीज का विवेक किसमें होना चाहिए? तो राग द्वेष को हटा दें तो क्या होगा? तब बुद्धि विवेक करने में समर्थ होगी। बुद्धि आत्मा के अत्यंत सूक्ष्म है, तो बुद्धि यह निर्णय लेने में समर्थ हो जाएगी कि यह शरीर आदि जो है, यह जो है राग द्वेष इनमें रहने वाला नहीं है। राग द्वेष तो मन में रहता था और उसके लेकर के प्रवृत्ति होती थी, आत्मा में भी कोई प्रवृत्ति निवृत्ति है नहीं, और प्रवृत्ति निवृत्ति है तो मध्य की वस्तु है, और ये शरीर और इंद्रिय आदि उसके साधन, ये समझ में आएगा। और ये जब समझ में आया तो ऐसा जब विवेक होता है तो इसके लिए ही आत्मयज्ञ की चर्चा की। तो इंद्रियों को जो है राग द्वेष से रहित कर देना, तो इंद्रियों को नहीं, राग द्वेष कहां से उदित होगा? तो कहने लगे अंतःकरण से। तो अंतःकरण में राग द्वेष का न होना, आसक्ति का न होना अंतःकरण की शुद्धि है, और वहीं पर विवेक होता है। और ये भी नियम है कि ये विवेक भी राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही होगा। तो राग द्वेष निवृत्त कब होगा? इसलिए संकेत किया आत्मा यजमानः इंद्रियाणि पशवः। जो आत्मा ही जहां पर यजमान है और वो जब यज्ञ कर रहा है तो इंद्रियों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई। अब इंद्रियों की रक्षा क्या है? तो वही बात आ जाएगी, जहां जहां कहा तो यही शब्द आता है, संयतेन्द्रियः, इंद्रियों का संयत होना या राग द्वेष से रहित होना। अब इंद्रियों की संयतता भी क्या होगी? तो संयत शब्द का अर्थ माने उनका जो सम्यक रूप से यतन होना, वो अपने कार्य को करें लेकिन उनका कोई शासक होना चाहिए, और शासक ऐसा होना चाहिए जो यज्ञ रूप कर्म करने वाला हो। जब आत्मा यजमान होगा और आत्मा से शासित प्रक्रिया जब चलेगी तो इंद्रियों के अंतर्गत संयतता आ जाएगी, और जब अविद्या के द्वारा अज्ञान के द्वारा शासित होकर के इंद्रियों को जो है प्रवृत्त किया जाएगा तो वहां पर इंद्रियों के राग द्वेष की निवृत्ति हो सकती नहीं, तब इंद्रियों की सुरक्षा हो सकती नहीं। इसलिए वहां कहा आत्मा यजमानः, जहां ऐसा हम मान लेते हैं और ऐसा यज्ञ जब करते हैं तो आत्मा के द्वारा यज्ञ हो रहा है, और आत्मा जब यज्ञ करेगा, आत्मा यजमान बनेगा, तो आत्मा क्या फल चाहेगा? विचार करो। कहने लगे आत्मा तो स्वयं ही स्वयं है, इसलिए उसमें चाहना है। ये चाहना जो है उदित कब हुई है? तो सत्य सत्य को लेकर के, मिथुन को लेकर के, इसलिए आत्मा में कोई चाहना नहीं। इसलिए आप कहते हो जब यज्ञ करता है तो अंतःकरण शुद्ध होता, तो उसकी जो आसक्ति है चली जाती, आसक्ति चली जाती है तो कामना भी चली जाती, कामना चली जाती है तो क्या हो जाता? आत्मा रामः। क्या बोलते? आत्मा राम हो जाता, तब उसका रमण अपने आत्मा में होता है, अन्यत्र उसका कहीं रमण नहीं होता। और जब ऐसा होगा तो इसी का नाम है क्या? मोक्ष। तो ऐसी उसकी कामना, ऐसे आत्मा की कामना करना, आत्मा की तरफ अपनी इंद्रियों को, अपने जो है अंतःकरण को प्रवृत्त करना, इसका नाम है फिर मुमुक्षता। इसका नाम क्या है? मुमुक्षता। तो इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो कर्म के द्वारा जो आचार्य यहां संकेत करने जा रहे हैं, ये जो मुमुक्षता है वो कर्म के द्वारा नहीं, किंतु किसके द्वारा होगा? इच्छा से रहे तो आत्मा राम हम कब होंगे? तो इधर से हम उल्टे चल पड़ते हैं, और विचार जब करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कार्यकारण भाव का विश्लेषण करते हैं, तब हम देखते हैं कि जिन शब्द स्पर्श रूप रस आदि को हमने अपना लक्ष्य बनाया, अपने ज्ञान का जो है निमित्त बनाया, वही विषय कहलाते। जो हमारे ज्ञान का निमित्त बनकर के उपभोग का है, साधन बने वही विषय कहलाता है। विषय क्या है? तो हमारे ज्ञान का और हमारे ज्ञान का निमित्त होता हुआ जो हमारे उपभोग का साधन बने वो है विषय। तो शब्द स्पर्श रूप रस को ही हमने क्या भी किया है, अपने ज्ञान का विषय बनाया और ज्ञान का विषय बनाते हुए उसी को हमने अपने उपभोग का साधन माना। और ये जब तक हम मानते रहेंगे तब तक क्या होगा, तब तक इनसे आसक्ति निवृत्त होने वाली नहीं। और जब हमने अपने ज्ञान का विषय है या ज्ञान का निमित्त आत्मा को माना और आत्मा को निमित्त मान करके उपभोग का साधन भी उसी को मान लिया तो क्या होगा भाई, जब ज्ञान भी हमारा जो है निमित्त कहां पर पहुंचा का आत्मा में और उपभोग का साधन भी जब उसी को मान लिया तो उपभोग क्या है? आप चाहते हो हम माने एकांतिक आत्यंतिक सुख प्राप्त करें और आपने शास्त्रों में सुन लिया कि वो मोक्ष से होगा और मोक्ष का मतलब है आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। और अब आत्मा का ज्ञान करने के लिए प्रवृत्त हो रहे तो श्रुतियों को क्यों सुन रहे हो? आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। अब आत्मज्ञान को ही आपने अपना जो है निमित्त माना और उसी की कामना है और उसी को आपने अपने उपभोग का साधन बना लिया तो फिर जो है क्या होगा? तो उपभोग भी आत्मा में होगा, ज्ञान भी उसी में होगा। तो अब वहां पर आत्मा अनेक तो है नहीं, आत्मा है एक। और अनेकता जहां होती है वहीं पर राग और द्वेष होता है, और जहां आत्मा एक ही है तो वहां फिर राग द्वेष की गति हो सकेगी नहीं। ये संकेत है। तो इसलिए संकेत किया कि पहले इस चीज को समझना होगा, विवेक करना होगा, और इस विवेक के करने से पहले राग द्वेष को निवृत्त करना होगा। राग द्वेष को निवृत्त करने के लिए श्रेष्ठतम कर्म करने की आवश्यकता है। यद्यपि कर्म मोक्ष का साधन नहीं माना, आचार्य ने भी नहीं माना और हो भी नहीं सकता, लेकिन श्रेष्ठतम कर्म के द्वारा क्या होगा? मल की निवृत्ति होगी। मल क्या है? तो राग द्वेष ही मल। और मल विच्छेद की जब निवृत्ति हो जाएगी तो मल विच्छेद की निवृत्ति होने पर विवेक होगा, और विवेक होगा तो क्या होगा कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, वास्तव में लाभप्रद क्या है और अलाभप्रद क्या है, ऐसा विवेक होगा। और जब ऐसा विवेक होगा तो ऐसे विवेक से आसक्ति की निवृत्ति होगी। किसकी निवृत्ति होगी? आसक्ति की निवृत्ति होगी। और आसक्ति की निवृत्ति होगी तो आसक्ति की निवृत्ति होने पर फिर उसका व्यवहार करते हुए भी, व्यवहार समाप्त नहीं होगा, व्यवहार करते हुए भी और उसमें बंधन नहीं। देखो विवेक होने पर आसक्ति कैसे जाती, तो बड़ी मोटी सी भाषा में आप समझो। अच्छा समय हो गया, चलो फिर कल बतलाएं। ओम शांति शांति शांति।